नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पत्री का अध्ययन आरंभ करेंगे। इब्रानियों के नाम पत्री मसीहों के एक झुंड को लिखी गई थी, जो बढ़ते हुए विरोध के कारण अपने मसीह विश्वास को त्यागने के खतरे में थे। लेखक उन्हें अपने विश्वास में बने रहने के लिए उत्साहित करता है, मुख्यतः ये दर्शाते हुए कि मसीह यीशु ही परमेश्वर का वास्तविक और अंतिम प्रकाशन है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में इसकी रूपरेखा पर विचार करेंगे, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
Hallelujah, hallelujah. प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा हम इन दिनों बाइबल में से अध्ययन कर रहे थे दानियल नबी की पुस्तक, और हमने इस अध्ययन का समापन किया और आज हम अपने अध्ययन में एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। नए नियम में से इब्रानियों की पत्री से हम अपने अध्ययन को आरंभ करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि इस नए पुस्तक में से जब हम अध्ययन करते हैं निश्चय ही परमेश्वर का वचन हम में से हर एक के जीवन में कार्य करेगा। तो मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और अपने परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सच्चे और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम इब्रानियों की पत्री से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं, इसके परिचय को हम देखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज जब हम इस पुस्तक के बारे में सीखते हैं, जानते हैं, तो निश्चित रूप से आपका वचन हम में से हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं और अपने जीवन में किसी प्रकार से निराश और परेशान हैं, बीमार हैं। पिताजी, हमारी विनती है कि इस वचन के द्वारा से आप उनसे बोले और बातचीत करें, उन्हें छुए और चंगाई दे, ताकि हर एक श्रोता भाई बहन आप में आनंदित होने पाए। आज के इस अध्ययन को आपके हाथों में सौंप देते हैं, हम सब पर अपनी आशीष दे। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आज हम नए नियम से इब्रानियों की पत्री से अपने अध्ययन को आरंभ करने जा रहे हैं। आज हम इस पत्री के परिचय को देखेंगे। इब्रानियों की पत्री ऐसी महत्वपूर्ण है कि मैं इसे सर्वोत्तम पुस्तक रोमियों की पत्री के साथ रखता हूँ। जी हाँ, मैं सदा ही सोचता रहता हूँ कि इस महान पुस्तक इब्रानियों के योग्य प्रस्तावना कैसे लिखूं। मेरे सामने अन्य टीकाकारों के प्रति उत्तम लेख है और मैंने सोचा कि उनमें से चार को आपके सामने इस पुस्तक की प्रस्तावना में रखने दूं। उनमें से प्रत्येक के विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उनकी बातें मेरे मुंह की बातें हैं। सबसे पहले मैं जी कैंपबेल मॉर्गन के विचार को रखता हूं। आज इब्रानियों की पत्री का विशेष महत्व है क्योंकि आज मसीही की धारणा नए नियम से कम समझी जा रही है। मेरी बात का उदाहरण देने के लिए एक लेखक का संदर्भ आपको देना चाहता हूं। मनुष्य के स्वभाव के बारे में हम एक सबसे अच्छी बात यह कह सकते हैं कि जब भी ऐसी परिस्थिति हो कि कोई अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे दे, तो किसी न किसी वीर का कभी कभी उभरना निश्चित है कि वह अपने आप को बलि चढ़ाए। समुद्र में कूदने वाला कर्टियस, जहर पीने वाला सुकरात, कलवरी पर क्रूस की मृत्यु मरने वाला यीशु, जी हाँ, ये वीर और उदाहरण है। मैं इस पर अधिक विवाद ना करते हुए कहता हूं कि प्रभु यीशु को इनके साथ रखना लगभग निंदा करना ही है। कर्टियस और सुकरात की चर्चा तो ठीक है, परंतु जब हम प्रभु यीशु की चर्चा करते हैं तो हम नए नियम के संगत ही नहीं, उसके अद्वैत व्यक्तित्व के बारे में कही गई बातों के विपरीत चर्चा करते हैं। मेरे प्रियो, यह इब्रानियों की पत्री का अति उत्तम आरंभ है। डॉक्टर विलियम पिंटिंगगिल अपने आरंभिक कथन में किसी और बात पर बल देते हैं। आदम से मूसा तक 2500 वर्ष और मूसा से मलाकी तक 1100 वर्ष भविष्यद्वक्ता मनुष्य को परमेश्वर का संदेश सुना रहे थे, परंतु इन 36 वर्षों में उनके द्वारा लाया गया परमेश्वर का प्रकाशन केवल अधूरा ही था। तब 400 वर्ष की शांति के बाद जब समय पूरा हुआ, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा और उसमें उसका आविर्भाव परिपूर्ण था, सिद्ध था। मेरे प्रियो, यह एक और महान कथन है। अब मैं इब्रानियों की तीसरी प्रस्तावना को देता हूं, जो ई भुइलर इंग्लिश के विचार हैं। नए नियम के सर्व महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक इब्रानियों में मसीही विश्वास की कुछ मुख्य शिक्षाएं हैं। यह पुस्तक अनंत तर्क और महान मनोहरता की पुस्तक है। इसे पढ़ना स्वर्ग के वातावरण को फूंकने के समान है। इसका अध्ययन करना मानो आत्मिक भोजन खाना है। इसकी शिक्षाओं पर चलना अपरिपक्वता से मसीही विश्वास वरन मसीही में परिपक्व होना है, यह सिद्धता में बढ़ते जाना है। यहां एक और टिप्पणी को हम देखते हैं। हमारे प्रभु यीशु को महायाजक के पद पर दर्शाती हुई नए नियम की एकमात्र पुस्तक इब्रानियों की पुस्तक है। परमेश्वर पुत्र, मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह की असीम महिमा है। यह एक अति महान बात है। मेरे प्रियो, अब मैं चौथे टीकाकार सर रॉबर्ट एंडरसन का संदर्भ देता हूं और आशा करता हूं कि अपने इस अध्ययन में हम उनके विचारों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। उन्होंने तो अति स्पष्ट कहा है और मैं विश्वास करता हूं कि उनके विचार निम्नलिखित कथन को स्पष्ट करते हैं। पृथ्वी पर गवाही देने वाली कलिसिया सच्ची दाखलाता है। यह झूठी शिक्षा का घृणित झूठा कथन है कि वह जैतून का पेड़ है। यह सुधारवादी कलिसियाओं का भ्रम है। धर्मशास्त्र की शिक्षा तो स्पष्ट है कि प्रभु यीशु ही सच्ची दाखलता है और इसराइल जैतून का वृक्ष है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को, जिसे वह पहले से जानता था, त्याग नहीं दिया है। मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक लंबे समय तक पश्चात्य कलिसियाओं द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी, जिसका कारण था कि कलिसिया इसराइल के स्थान पर अधिकार करना चाहती थी। उन्होंने इसराइल को दी गई परमेश्वर की सब प्रतिज्ञाओं को अपने लिए मानकर उनका अर्थ निर्धारित किया था और इस प्रकार इसराइल के लिए परमेश्वर की योजना का तिरस्कार किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कलिसिया यहूदियों के विरुद्ध हो गई और उन्हें सताया। अतः यह कहना कि परमेश्वर को अब इसराइल से प्रयोजन नहीं रहा एक बड़ा झूठ है। मेरे विचार में इस घटना से हम समझ पाएंगे कि एक इब्रानी इब्रानी ही है जो एक सत्य है। वह प्रभु यीशु को ग्रहण करके भी इब्रानी ही है। परमेश्वर की संतान बन जाने से किसी की जाति नहीं बदलती, वह केवल विश्वासियों की देह कलिसिया का अंग बन जाता है। आज परमेश्वर यहूदी और अन्य जातियों को एक साथ अपने नाम के निमित्त बुला रहा है। जब यह काम पूरा हो जाएगा, तब वह अपनी कलिसिया को इस संसार से उठा लेगा और इसके बाद वह इसराइल के साथ अपना प्रयोजन पूरा करेगा और उनको दी गई सब प्रतिज्ञाएं पूरी करेगा, वरन उनके द्वारा तब वह अन्य जातियों को भी आशीष देगा। मेरे प्रियो, मैं इन चार अति उत्तम वचन के टीकाकारों का आभारी हूं कि उन्होंने हमें परमेश्वर के वचन में प्रवेश करने के लिए तैयार किया है। इब्रानियों का लेखक कौन है? यह एक जटिल प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में सर्वसम्मति नहीं कि पौलुस इसका लेखक है, जबकि सेमिनार अर्थात बाइबल अध्ययन के महाविद्यालयों में मैंने अपने शोध लेख में यही सिद्ध करना चाहा था कि पौलुस इस पत्री का लेखक है। मैं तो सोच रहा था कि मैंने पौलुस को इब्रानियों का लेखक सिद्ध किया है तो लोग मान लेंगे कि वही इस पुस्तक का लेखक है, परंतु न तो जॉन कैल्विन और न ही मार्टिन लूथर और न ही पहले के अनेक टीकाकार पौलुस को इसका लेखक मानते हैं। अतः इसका लेखक इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसका परमेश्वर का वचन होना महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, यह तो सच है कि सैद्धांतिक रूप में पौलुस को इसका लेखक नहीं माना जाता है, परंतु भीतरी और बाहरी प्रमाण प्रकट करते हैं कि पौलुस इसका लेखक है। वह लेखक बंदी था, अर्थात बंदी गृह में था। हम इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय उसके 34 पद में इसे पाते हैं। उसने इटली में यह पत्र लिखा था। इब्रानियों 13 अध्याय उसके 24 पद में इसे हम पढ़ते हैं। उसका साथी तीमुथियुस था। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है। मेरे विचार में पत्रस पौलुस को ही इसका लेखक कहता है। दूसरा पत्रस की पत्री 3 अध्याय उसके 15 और 16 पद में पौलुस ने अपना नाम नहीं दिया और अपने लिखने की शैली को बदल दिया। इसका उपयुक्त एवं पर्याप्त कारण है जिसे हम अपने अध्ययन में आगे देखेंगे। मेरे प्रियो, लेखक का प्रश्न उठने के कारण इस पत्री के लिखे जाने की तारीख जानना अति आवश्यक है। अनेक विद्वान, प्रतिष्ठित विद्वान कहते हैं कि यह पत्री सन 70 के बाद लिखी गई थी। कुछ विचारकों के अनुसार इसकी लेखन तिथि सन 85 और कुछ लोगों के अनुसार 96 और अन्य इसे 90 के दशक में रखते हैं। जब आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो आप यह मानने पर विवश हो जाते हैं कि इस समय मंदिर नाश नहीं किया गया था। इसका अर्थ है कि यह पत्री सन 70 से पहले लिखी गई थी, जब तीतुस की सेना ने यरूशलेम के मंदिर को जला दिया था, और सन 70 में तो पौलुस स्वर्ग सिधार गया था। मेरा मानना है कि यह पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा सन 70 से पूर्व लिखी गई थी। कोलरिज का कहना है कि रोमियो की पत्री में मसीही विश्वास की आवश्यकता व्यक्त है, तो इब्रानियों की पत्री में मसीही विश्वास का बड़प्पन दिखाया गया है। यह विचार संपूर्ण पत्री में व्याप्त है और अधिक उत्तम शब्दों द्वारा प्रकट होता है। लिखा है कि व्यवस्था अच्छी है, परंतु मसीह के अधीन अनुग्रह अधिक उत्तम है और आने वाली महिमा और भी अधिक उत्तम है। इब्रानियों की पत्री उसी बात को प्रकट करती है जो अधिक उत्तम है, अर्थात सिद्ध। सिद्ध शब्द अपने पर्याय शब्दों के साथ 15 बार आया है। यह पत्री हमें चुनौती देती है, तो आओ हम, यह शब्द 13 बार आया है। मेरे मित्रों, दो पद हमें इससे अधिक उत्तम मार्ग का सुझाव देते हैं। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। हमें उसके ध्यान में रहना है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 3 पद में भी लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। इब्रानियों की पत्री के अध्ययन में हम यही करेंगे, हम प्रभु यीशु का ध्यान करेंगे। जी हाँ, मैं तो मानता हूं कि एक विश्वासी के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण काम है। मेरे प्रियो, हम आगे देखेंगे कि मसीह स्वर्गदूतों से उत्तम है। जी हाँ, इस पत्री में पहला भाग धर्म के सिद्धांतों का है, पहले 10 अध्याय प्रकट करते हैं कि मसीह पुराने नियम की व्यवस्था से उत्तम है। इस पत्री का दूसरा भाग व्यवहारिक है, जिसमें व्यक्त किया गया है कि मसीह उत्तम लाभ और कर्तव्य लाता है। प्रसंगवश प्रेरित पौलुस ने अपने सब पत्र इसी नमूने पर लिखे थे, पहले सिद्धांत की बात, तब व्यवहार की बात। मेरे विचार में अनेक प्रमाण इस पत्री को पौलुस द्वारा लिखी गई पत्री के रूप में प्रकट करते हैं। मैं इब्रानियों के लेखक के विषय में तो निश्चित रूप से नहीं कह सकता, परंतु हाँ, यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, जो परमेश्वर के आत्मा ने हमें दिया है। पवित्र आत्मा इसका मुख्य लेखक है, इसलिए इसकी लिखने की तारीख और लेखक से हमें कोई खास प्रयोजन नहीं है, वे सब बाद की बातें हैं। इब्रानियों परमेश्वर के वचन की महान पत्रियों में से एक है। जब मैं कहता हूं कि मैं इस महान पत्री पर टिप्पणी करने के योग्य नहीं, तो यह मेरा धार्मिक मंत्र जाप नहीं है। यही कारण था कि मैंने 4 महान टीकाकारों के विचार इसकी प्रस्तावना में आपके सामने रखे हैं। वे अपनी अपनी समझ के अनुसार एक ही बात पर आए, और वह है प्रभु का मनुष्यत्व। यही कारण है कि प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा की याचना करता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 12 से 15 पद में आप इसे पढ़ेंगे। जब पवित्र आत्मा आएगा, तब वह मसीह की बातों को लेकर हमें समझाएगा। मेरे प्रियो, हमें स्मरण रखना है कि यह पत्री इब्रानी विश्वासियों को लिखी गई थी, जो 2 महान युगों के 2 राहों पर खड़े थे। व्यवस्था का युग समाप्त हो गया था, मंदिर के चढ़ावे जो कभी महान महत्व के थे अब अर्थहीन हो गए थे, जो कभी परमेश्वर की ओर से अनिवार्य था अब विश्वासी के लिए पाप था। यह पत्री प्रकट करेगी, यह पत्री इब्रानी विश्वासियों के लिए थी, परंतु इसकी शिक्षा हर एक युग की हर एक जाति के लिए आज भी है। आज भी यह आपके और मेरे लिए अत्यधिक उपयोगी है। यह कहना कि मसीही भविष्यद्वक्ताओं से उत्तम है, केवल एक इब्रानी ही समझ सकता है। अतः यह पत्री इब्रानियों को लिखी गई थी ताकि वे इस बात को समझ सकें और स्वीकार कर सकें। मेरे मित्रों, इसलिए इब्रानियों की पत्री बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसमें परमेश्वर के द्वारा दिए गए उन वचनों को पढ़ने और सीखने जा रहे हैं, जो हमारे जीवन के लिए भी अत्यधिक लाभपूर्ण है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम इस पत्री का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर इस पत्री के द्वारा से मुझसे और आपसे, हम सभी से बातचीत करेंगे, हमें सिखाएंगे, हमें समझाएंगे, ताकि हम परमेश्वर के उन वचनों को समझकर, सीखकर और अपने जीवन में ग्रहण कर उसको महिमा दे सकें। मेरे प्रियो, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना के साथ अपने आप को इस अध्ययन के लिए और आगे बढ़ाएं। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें इब्रानियों की पत्री के प्रस्तावना को देखने में मदद किया। आज जब हम आगे बढ़ते हैं, अपने अध्ययन को और अगले अध्ययन में सीखते हैं, हमारी आपसे ही प्रार्थना है कि आप हमारे श्रोता भाई बहनों को ऐसा तैयार कर दें ताकि जब हम अगले अध्ययन में मिलें, तो निश्चित रूप से हम आपके वचन पर और अधिकाई से अध्ययन कर सकें, समझ सकें, सीख सकें और उसे अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं। हमारी प्रार्थना है इस समय हमारे उन भाई बहनों के लिए जो बीमार अवस्था में हैं, निराश और परेशान हैं, अपने जीवन में बहुत ही तकलीफ में हैं। पिताजी, आप उन पर कृपा दृष्टि करें। मेरी आपसे प्रार्थना है इसी घड़ी आप उन्हें छू लें, उनसे बोले और बातचीत करें, उनके पापों को आप क्षमा करें, उन पर दया करें, उनके रोगों से आप उन्हें छुटकारा दें, उनके जो भी कर्ज हैं उससे भी आप उन्हें छुटकारा दें, जिस परिवार में संतान नहीं है, पिताजी आप उस परिवार को संतान के द्वारा से आशीषित करें। जो भाई बहन अपने नौकरी की तलाश में है, पिताजी आप उन्हें नौकरी प्रदान करें। होने दे कि प्रत्येक जीवन आपके वचन पर विश्वास करने पाए। इस घड़ी फिर से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में जब हम आपके वचन में से और भी भेद की बातों को सुनते और सीखते हैं तो आप हमें हमारे विश्वास में और अधिक मजबूत करेंगे। धन्यवाद प्रभु हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और हमें आशीष देने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।